हम सभी स्वागत करेंगे। भ्राता जी पिछले लगभग 56 साल से बाबा के ज्ञान में ही हैं। साकार बाबा के होते ही आप यज्ञ में समर्पित हो गए थे। आप साइंस ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। भारत और विदेश की बेहद सेवाओं में आपका बहुत अच्छा योगदान है। भोलेनाथ के भंडारे के आप व्यवस्थापक हैं और वर्तमान समय आपने समाधान कार्यक्रम के माध्यम से देखा होगा, करोड़ों आत्माओं के प्रश्नों के उत्तर देके उनकी दुआएं अर्जित करते हैं। तो हमारे भाई साहब में बहुत खूबियां हैं, दुआओं के धनी हैं, वाणी के धनी हैं, कर्मों के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं, बहुत धनवान हैं। तो ऐसे भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। और अभी भाई जी का जो विषय है, परिस्थितियों के बीच अचल अडोल स्वस्थ स्थिति कैसे रहे, उस पे हम सबका मार्गदर्शन करेंगे भ्राता जी।
टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। परिस्थितियां तो बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाएंगी या घटेंगी, अब घटने की कोई उम्मीद नहीं है। एक मुरली चली थी अव्यक्त बहुत साल पहले, मुझे साल याद नहीं है, जिसमें बाबा ने अंतिम समय 8 पेपर्स कौन कौन आएंगे वो बताया था। उसमें देह के भी थे, बीमारियों के, मोहों के, प्रकृति के, संस्कारों के, पैसे के, संबंधों में बहुत, ऐसे 8 विनाए थे बाबा ने। वो सब अब चालू हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैं जो कुछ देखता हूँ संसार में आजकल, जो फोन आदि आते हैं, पता चलता है बहुत परीक्षाएं परिस्थितियां आ रही हैं मोहों के कारण। दूसरी परिस्थितियां आ रही हैं भय के कारण, जिसका लोगों को अंदाज नहीं था। बाबा कहा करते थे भय बहुत फैलेगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल दिखाई देता है भय कैसे फैलता जाता है संसार में। कुछ परीक्षाएं परिस्थिति मनुष्य को आती हैं उसके पाप कर्मों के कारण। इसको बहुत कम लोग महसूस करते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के पाप होते हैं। कुछ परिस्थिति आती हैं अपने संस्कारों के कारण। देखो आजकल शायद आप लोगों में किसी को कोई इस कड़वे अनुभव से गुजरा हो। शादियां होती हैं बच्चों की, कितनी शादियां फेल हो रही हैं, मुझे तो उनके कारण भी बताते हैं। मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी समस्या होती है परिवारों के सामने। कहने सुनने में छोटी बात, हम भी कहा भाई डाइवोर्स हो रहे, कोर्ट में केस बढ़े, लेकिन जिनके साथ होता है और जिन परिवारों से होता है, कहीं इज्जत का प्रश्न है, कहीं वो लड़के लड़कियां मानसिक रोगी बन रहे हैं इस कारण से। इन मानसिक रोगों की परिस्थितियां का भी किसी को इतना एहसास नहीं था, बहुत बढ़ने लगी। एक दिन यहाँ के अखबार में मैंने पढ़ा 48% विशेषकर युवक, भारत की पॉपुलेशन का 48%, कितनी बड़ी संख्या हो गई, 60 करोड़ हो जाएंगे, मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। कुछ ज्यादा हो गए, कुछ में वो लक्षण बढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी परीक्षाएं हैं। मैं भय की बात कई सुना सकता हूं आपको, पर अभी नजदीक की एक घटना, एक बहन माता जी, उसके घर में कोई नौकरानी काम करती है। देखो भय क्या चीज है, नौकरानी के भाई को बुखार हो गया है, कोरोना नहीं हुआ, बुखार हुआ है। भाई उस अपनी बहन के पास नहीं रहता, वो अलग है, ये अपने घर है। ये इस माता जी के घर में काम करती है। माता जी भयभीत है, भयभीत होकर मुझे फोन किया, बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? नौकरानी के भाई को बुखार हो गया है। कहाँ रहता है? 100 किलोमीटर दूर है हमसे वो। तो तुम क्यों भयभीत हो? पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा है। कोई समस्या है ही नहीं, समस्या है ही नहीं। हमारे शांतिवन में कितने लोगों को बुखार हो गया है, क्योंकि ये सीजन बदलता है, जब भादों के बाद बुखार होते हैं। कोरोना टेस्ट कराने जाएंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, कराने की जरूरत नहीं। कल ही मुझे किसी ने इटली के डॉक्टर्स के द्वारा किया गया नया प्रोग्राम भेजा, सुनने जैसा, इसलिए सुना रहा हूं। WHO है, विश्व की स्वास्थ्य संगठन की जो जहां सर्विसेज होती हैं। अभी देखो आजकल मनुष्य मनुष्य तो रहा नहीं है, सीधा बोलने में कोई हर्जा नहीं है, राक्षस हैं सब। चीन ने और उन्होंने मिलके ये कोरोना का हवा खड़ा किया है और कह दिया था कि किसी भी डॉक्टर को उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं करना होगा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है कोरोना से। अभी कोई डॉक्टर कर नहीं रहा था। अभी इसी हफ्ते इटली के डॉक्टर्स ने सोचा कि नहीं, हमें करके देखना है। उन्होंने उनके ऑर्डर को एक तरफ फेंका, पेशेंट्स का पोस्टमार्टम किया, पता चला कोरोना था ही नहीं, बैक्टीरिया है केवल, जो नसों में खून को जमा कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कहा कुछ नहीं, एंटीबायोटिक गोली दो ठीक हो जाएगा, बुखार हो रहा हो पैरासिटामोल दे दो ठीक हो जाएगा। कहा सब इनका शैतानी काम है, संसार की इकोनॉमी को डाउन करने का प्लान था चाइना का। अब हम देख सकते हैं, जब भारत में केवल 1000 केस थे, हाहाकार था, लॉकडाउन कर दो, बाहर न निकलना, किससे मिलना नहीं है, दुकानें बंद, बिजनेस बंद। अब 1 लाख रोज आ रहे हैं, कोई डर नहीं, आप भी आगे भाग के, बाजार खुले हैं। मुझे ऊपर से नीचे आने में 1 घंटा लग गया, जिसमें 35 मिनट लगते, इतनी भीड़ कारों की, गुजराती लोग घूमने आ रहे हैं, लाइन ही लाइन लगी, कोई डर नहीं। भय अनेक समस्याओं का कारण है। जब ये शुरू हुआ, मैं पहले बहुत लोगों को सिखा दिया था, क्लासेज में बताया था, डरना नहीं है, डर निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये कुछ नहीं है, वायरस तो बहुत फैले हुए वायुमंडल में भी, हम थोड़ी सावधानी रखते हैं, कुछ नहीं होता उससे, नथिंग, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो हम परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे और चिंतन भी करेंगे। भय को कैसे निकालेंगे? मौत का भय ब्राह्मणों में होना नहीं चाहिए, पर कईयों में है, माताओं में है। क्यों? अभी तक अभ्यास नहीं हुआ कि हम आत्माएं हैं और आत्मा मरती नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माता छोटी आयु की, 2 छोटे बच्चे, 30 साल से भी कम आयु इसके, 26-27 साल, मुझे फोन किया। ज्ञान तो आजकल नेट से लेते हैं ना, सेंटरों से नहीं। बहुत डर लग रहा है भाई जी। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे कोरोना हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कहा किसने प्रोग्राम दे दिया कोरोना तुमको होने जा रहा है, कितने दिनों में होगा जरा मुझे बता दो, दवाई मैं भेज देता हूँ। भयभीत, हम कुछ चीजों को बहुत पक्का करेंगे। कौन सा समय आ गया है, कौन सा समय आ गया है, परिवर्तन का। ये 10 साल, अभी 20 के तो 3 ही मास रह गए, ये अगले 9-10 साल युग बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, धरती आकाश बदल जाएंगे, सूरज चांद तारे बदल जाएंगे, छोटा परिवर्तन नहीं होगा, महापरिवर्तन जिसमें महाविनाश भी है। हमें तैयार होना है। अब देखो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, माँ बाप चिंतित हैं, आप भी चिंतित होंगे इनका क्या होगा। कुछ नहीं, जितना एजुकेट उनको होना है वो हो जाएंगे, परेशान चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2030 के बाद किसी का कोई भविष्य नहीं होगा। 29-30 में विश्व युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। इन्हीं 10 सालों में बाबा की सेवाओं का विस्तार और इसका स्वरूप भी बहुत बदल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं अब सेवाएं तो होंगी नहीं, ऐसे ही चलेंगी। हमारे यहाँ हाइजीन की मीटिंग होती रहती है, भोजन स्वच्छता ये वो, कुछ गड़बड़ ना हो। आपको तो पता नहीं 2019 में मार्च में बहुत लोग बीमार हो गए थे यहाँ, लास्ट में विदेशी भी थे बहुत सारे, 300 टीचर बहनी थी, 300 की 300 को लूज मोशन हो गए। अब वो लोग बहुत घबराते हैं। मैंने कहा मुझे भी हुए एक मास में, मुझे तो 3 बार हुए, हमें तो ड्यूटी पे भी रहना पड़ता है, लूज मोशन हो या कुछ भी हो, लेकिन वो लोग बहुत घबराते हैं। हाइजेनिक मीटिंग होने लगी तो बहन एक मेरे पास बैठी थी, कहती क्यों मीटिंग कर रहे हो, अब कौन आएगा यहाँ। मैंने कहा क्यों, कोरोना जीवन भर चलना है क्या, कुछ भी सदा नहीं चलता, 50,000 आएंगे, अब तक 25-26-28 तक आए हैं, अब 50 आएंगे, अभी तो जय जयकार का लंबा चौड़ा पार्ट बाकी है। बहुत सुंदर संगम युग के दिन, साक्षात्कार की जब धूम मचेगी वो दिन बाकी हैं। तो सभी को मैं कुछ प्रैक्टिस बता देता हूँ, क्योंकि केवल थ्योरिटिकल क्लास करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, 50 पॉइंट सुनाई जा सकती हैं, ये करो ये करो ये करो, वो नहीं। 5 प्रैक्टिसेस और 5 धारणाओं की बातों में हम अपने को स्ट्रांग बनाएंगे, तो आने वाले समय में हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रख पाएंगे। हमें रखनी जरूर है, रखनी है या नहीं, बहनों को रखनी है या पहला बम छूटते ही परमधाम, फिर बच्चों का क्या होगा। माताओं को तो स्ट्रांग होना, अगर बच्चों को संभालना भी है तो खुद तो मजबूत रहना होगा ना। तो पहली एक बाबा की चीज मैं तो बहुत याद रखता हूं और 1000 बार कम से कम सुना चुका हूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बहुत अच्छी चीज है ये। अब स्वस्थिति का असर हमारी स्थिति को बिगाड़े या हमारी स्थिति का असर परिस्थितियों को बदल दे, ये हमें सोचना है। और श्रेष्ठ स्थिति ही सुरक्षा का साधन रहेगी, ये भी हमें याद रखना है। चीज सभी को बहुत अच्छी तरह जान लेनी है, हमारे वाइब्रेशंस जितने पावरफुल होंगे, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, हमारे वाइब्रेशंस जितने पावरफुल होंगे, जहां तक फैलेंगे वहां तक अनेक परिस्थितियां नॉर्मल रहेंगी। आपके वाइब्रेशंस यदि आपके घर में फैलते हैं बहुत अच्छे, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अपने मन को, अपनी मेंटलिटी को तैयार करेंगे कि जैसे जैसे चेंज आए, हम अपने विचारों को बदलते चलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होगी। जैसे जैसे चेंज आए, विचारों को बदलते चलें। हर फील्ड में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे खेल कूद भी नहीं रहे, कईयों के वजन बढ़ गए हैं, कई बच्चे उदास भी हो रहे हैं, क्योंकि बचपन जो है खेल कूदने के लिए भी होता है, उनको अपने फ्रेंड सर्किल्स भी चाहिए, बच्चों को बहुत कुछ चाहिए, खुली हवा, घर से बाहर, ये बच्चों के विकास का साधन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, तो इसे स्वीकार करके इस चेंज के आधार पे ही बच्चों को जीना सिखा देना है, ताकि वो खुश भी रहें, हेल्दी भी रहें, पढ़ाई में भी उनका मन लगा रहे। तो हमें चेंज को स्वीकार करना है। भाइयों को मैं एक बात कहूंगा, आप जो माताएं हैं उनको भी, करोड़पति बनने के सपने अब कोई न देखे। मैं पहले से भी कहता रहा हूं, कुछ दिन पहले, क्यों न देखे? आप कहेंगे पैसा तो सबको चाहिए। एक भाई को बहुत अच्छी आमदनी हो गई, अभी की घटना है, बिल्कुल पिछले 15 दिनों की। वो वैद्य है, काफी अच्छा उसने कमा लिया, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, तो किसी को ब्याज पे दे दिया, 1 करोड़ के थोड़े दिन में 1.5 हो ही जाएंगे। 1 हफ्ते पहले मुझे फोन किया, जिसको ब्याज पर दिया था उसकी तो मृत्यु हो गई, अब क्या करूं? समझ लें आप, बैंक भी फेल होंगे, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आएगी। ये तो भैया आप सबने देख लिया ना, अब गवर्नमेंट के पास टैक्स ही कम पहुंचेगा, जीएसटी कम मिलेगी, कुछ हो ही नहीं रहा, बिजनेस ही नहीं चल रहे, जीएसटी मिलेगी कहां से? तो हर तरह की कठिनाई होगी, इसलिए जो कुछ आपके पास है उसे सुरक्षित रखना, कैश भी अपने घर में रखना चाहिए थोड़ा, और करोड़पति बनने की कामना नहीं। मेरे पास कईयों के अनुभव अभी अभी के हैं, बैंक से बड़ा लोन लेकर 5 करोड़ लेकर काम शुरू किया था, फैक्ट्री शुरू की थी, अब वो तो बनी नहीं अभी तक, अब कहां से तो उतारेंगे, कब वो चलेगी? बेचारे कहते हैं सुसाइड कर लें, आखिरी संकल्प मनुष्य को यही होता है, परिवार सहित सब सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए बहुत संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करना है। अभ्यास लिख लें आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत अच्छी इसकी अनुभूति रखनी है। और साथ में बाबा का ये सुंदर महावाक्य भी याद रखना है, लिखाऊंगा ये भी, आप लिख के और अपने घर में कहीं ऐसी जगह लिख लेना जो आपको पढ़ने को मिलता रहे। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। यही एक बाबा का महावाक्य था, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। मैंने ये कई साल से सुना था, पहले इस पर खुद बहुत अच्छे अभ्यास किए, अपने साथियों से कराए, फिर जब समाधान का शुरू किया तो उस पे हमने ये दिया। और आपको ये जानकर खुशी होगी, लाखों लोग, हजार नहीं लाखों, इस एक अभ्यास को करने से मुक्त हुए। नॉन बीके, आजकल तो गूगल का और सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पहुंच रहा है, व्हाट्सएप से और क्लासेज पहुंच रही हैं। नॉन बीके, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया इन्हीं साधनों से, फोन करते हैं, आधे फोन नॉन बीके के आते हैं, विदेशों से तो जितने भी आएंगे सब नॉन बीके समस्या है। मैं उनको बताता हूं, मास्टर सर शक्तिवान लिख दो 108 बार, योग तो लगाना आता नहीं। उनको बड़ी भावना रहती है ना, बस भावना से लिखना शुरू किया, अच्छी नौकरी मिल गई, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की बड़ी समस्या चल रही थी वो हल हो गई। भावना का बड़ा महत्व। क्यों भावना का महत्व है पता आपको? मैंने इस पे सोचा था, जब से मैंने ये मन की शक्ति और सबकॉन्शियस माइंड का मुझे ज्ञान हुआ पूरा, फिर अव्यक्त मूल्यों से बहुत हुआ, दुनिया में इतना ज्ञान नहीं है इसका, मुझे थोड़ा सा दुनिया से मिला लेकिन अत्यधिक मिला मुरलियों से। तो किसी विदेश के देश में, स्पेन या फ्रांस में, एक लेडी साइंटिस्ट थी, वो है अभी भी, वो बीमार हुई बहुत। उसके दोस्तों ने कहा कि यहाँ जो चर्च है उसका पादरी एक पानी देता है, उसको पीने से सब ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं इन सब चीजों में नहीं मानती, इलाज चलता रहा, पैरालाइज हो गया था, नहीं ठीक हो रहा, कुछ नहीं हुआ। आखिर लोगों ने उसको अनुभव बताया, ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, ये ठीक हुई, वो ठीक हुई, उसमें भावना बैठा दी। कहा तो मुझे भी ला के दे दो, पानी पिलाने लगे उसको रोज। वो भी 15 दिन में ठीक हो गई। वो फिर गई पादरी के पास, कहा क्या है इस पानी में, आप क्या डालते हो? का कुछ भी नहीं, ये यहाँ रखा है मूर्ति के आगे, बस एक घड़ा भर के रख दिया, उससे देता रहता हूं। कैसे ठीक हो रहे हैं? भावना से। जब मनुष्य के अंदर भावना होती है तो उसकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब बाबा ने भावना को ज्यादा महत्व दिया नहीं था, इसलिए थोड़ी ब्राह्मणों की भावना सूख जाती है या नहीं? ऐसा भक्ति में ज्यादा भावना रहती है, ज्ञानियों को कम रहती है, पर भावना से अगर काम किया जाए तो संपूर्ण सफल। मैं तो देखता हूं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, मुझे कभी कभी अपने पिताजी के अनुभव याद आते हैं, गांव के, वो अभी शरीर छोड़ा है, अभी उनको इतना ज्ञान योग तो नहीं था, किसान थे, खेती के, मुझे बताते थे कि गन्ना बांधने गया हूं खेत में, ततैयों का छत्ता है बहुत जबरदस्त, देख लिया मैंने। ततैये समझते हैं ना आप, तो उसी भाषा के है ना, और वो तो काट ले तो क्या हाल करता है, लाल जलन। मैंने बाबा कहा बाबा इन्हें भगाओ, मुझे बांधना है ये ईख, और कहा 2-4 मिनट में सारे उड़ के भाग गए। और उनको इतनी भावना थी, बाबा कहा और काम हुए। मैंने कहा तो हमें भी नहीं होता जो उनको होता था, भावना। एक बात लिखी, दो, एक ही लिखी ना अभी, एक मास्टर सर शक्तिवान, दूसरा बाबा का आह्वान, पक्का करेंगे इन अनुभवों को बढ़ाकर। बाबा को बुलाया और बाबा हाजिर, होता है अनुभव, माताओं को ज्यादा होना चाहिए, होता है? हाथ उठाओ जिसको होता है, बढ़ाना ये अनुभव, जबरदस्त है। बाबा को बुलाया, इतनी देर भी कर सकते हैं, टाइम हो प्यारे बाबा बात करो, आ जाओ, यहां मदद की जरूरत है, करो। और न कुछ हो, बहुत जल्दी हो, बाबा तुरंत आ जाएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये आदत पड़ जाए। बम रख दिया गया है, भगदड़ हो गई, आपको पता चला बम है, फटेगा, आप बाबा का आह्वान करो, फटेगा ही नहीं जब तक आप न निकल जाएं। चमत्कारिक अनुभव होते रहेंगे। जरूरी होगा, क्योंकि विनाश काल माना भय ही भय। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं और बाबा मेरे साथ है, सिंपल प्रैक्टिस। इस संकल्प में भी बहुत बल है कि बाबा मेरे साथ है, लेकिन ये नशे में आ जाए, ये केवल रिपीट नहीं करेंगे हम, गुड फीलिंग। भगवान सर्वशक्तिवान साथ में है। अपनी प्रैक्टिसेज में देखो बाबा की मुरलियों में बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं, अव्यक्त जो चल रही हैं संडे को। तो मैं फरिश्ता हूँ लाइट हाउस, माइट हाउस, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। चाहे इसमें आप जोड़ लो पांच स्वरूपों का अभ्यास, जो बहुत सरल है, उससे एकाग्रता बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्योरिटी बढ़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, सारी धारणाएं इजी हो जाएंगी। पांच स्वरूपों के अभ्यास पे ध्यान देंगे, कभी भी करें, जरूरी नहीं आपको सवेरे उठ के ही करना है, कभी भी करेंगे। योग का चार्ट, चार घंटे तक अवश्य रखना है। बैठे आप न बैठे, बैठने की बात नहीं है, स्मृति स्वरूप, इसमें कुछ चीजें जोड़ लेंगे। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, बहुत सरल अभ्यास है। बाबा ने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी, हम ग्लोब के ऊपर हैं, गोले के ऊपर, और बाबा छत्र छाया, ऐसे बैठ जाओ। और दूसरी, इस स्मृति को बहुत पक्का करना है, अब खेल पूरा हुआ, सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है, फिर देवता बनकर आ जाना है। दोनों चीजें, जाना है फिर देव स्वरूप धारण कर लेना है। ये प्रैक्टिस आप बहुत बढ़ाएंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी, जो बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन के लिए। प्राकृतिक प्रकोपों में उन आत्माओं को सबसे ज्यादा मदद रहेगी जिनके पास ज्यादा प्योरिटी होगी। पांच बातें जो मैं धारणाओं की आपको कह रहा था, उसमें से एक चीज, सिंपल चीजें हैं ये, वो कठिन बातें मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूं। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना, संकल्प करेंगे जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। बहुत हल्का कर देगी माइंड को ये बात। दूसरा, हर आत्मा अपने अपने कर्मों का फल पूर्ण करके ही जाएगी। कर्मों के फल से कोई नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा हल्का होना होगा। इसमें बहुत समझदारी की, धैर्यता की बात होती है। आपका बच्चा ही है, बहुत प्रिय है, बीमार हुआ है, अभी आपको अपने मन को हल्का भी रखना है और उसे मदद भी करनी है, स्थूल भी सूक्ष्म भी। स्थूल में उसका इलाज, सूक्ष्म में उसको वाइब्रेशंस, योग की शक्ति की मदद देना। और मन को इसलिए हल्का रखना कि हर आत्मा को अब अपना हिसाब किताब चुकतु करना ही है, इसलिए खुद को बीमार नहीं कर देना है, क्योंकि सोच सोच कर मनुष्य ज्यादा बीमार होते हैं। मैं बहुत पहले से कहता था, मैंने बाबा के महावाक्य सुने हुए थे जो आजकल मुरलियों में नहीं हैं, पर क्योंकि मेरे से लोग कांटेक्ट रखते हैं, युवक ज्यादा, तो युवकों में बढ़ते हुए डिप्रेशन को देखकर मुझे लग रहा था कि 2020 से ये महामारी बहुत बढ़ेगी। WHO ने भी कह दिया था, तो अब ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। इसलिए कन्याओं को मैं खास कहना चाहता हूं, नॉन सेंसिटिव नेचर, बहादुर बन जाओ, जो कुछ होता है होने दो, मस्त हो जाओ, मस्त फकीर, जानकी दादी का टाइटल था ना, बेफिकर बादशाह। जो सेंसिटिव होंगे, भाइयों में थोड़े कम होते हैं, बहनें ज्यादा होती हैं, जो सेंसिटिव होंगे, समझते हैं ना सेंसिटिव सब, नाजुक नेचर, थोड़ी फीलिंग ज्यादा, हर चीज अंदर चली जाए, हर चीज खुशी को छीनने लगे, हर चीज मूड को ऑफ करने लगे, उससे स्ट्रांग होना है, नथिंग, हल्के हो जाओ, अपने को जरा विशाल दिल बनाओ, ये कुछ नहीं है, नहीं तो मानसिक रोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल ज्यादा सोचने की आदत बढ़ती जा रही, और इनका कोई इलाज नहीं होगा, कोरोना का तो है भी, मानसिक रोगों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी दो चार दवाई खिला के दो चार मास में कह देंगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इलाज है नहीं, वो तो डॉक्टरों की कमाई का साधन है। कोई डॉक्टर बैठा हो बुरा ना मानना भाई, डॉक्टरों ने कोरोना का काल का पूरा फायदा उठा लिया है। चेक कराओ कितना, 4,500 लगेंगे, पॉजिटिव दिखा दिया, इलाज कराओ कितना, 2,00,000, 2,50,000, कितना, पैसे वाले हैं तो 5,00,000, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। ये भी बहुत हो रहा है, निगेटिव को पॉजिटिव, कल निगेटिव था परसों पॉजिटिव, हमारे यहाँ हो रहे तो लोगों ने कराया ही नहीं, हमें तो, हमारे तो अपने डॉक्टर है ना, उन्होंने बता दिया कैंसर में किसी का नहीं कराना, नहीं तो 60% को दिखा देंगे, उनको 1,00,000 मिलता है गवर्नमेंट से। शांतिवन में भी बहुतों को बुखार है, कोई टेस्ट नहीं करा रहा, सबको पॉजिटिव दिखा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये पाप होता है ना लोगों का। तो मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे, बहुत खुश रहने की आदत डालेंगे, बहुत हल्का रहने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत हल्का, बहुत खुश, बहुत शक्तिशाली। प्रैक्टिस में मैं एक प्रैक्टिस भूल गया आपको बताना, वो भी बहुत सिंपल है। जब आप फरिश्ते की प्रैक्टिस करेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, तो मेरे चारों ओर आभा मंडल है, पावरफुल आभा मंडल, ओरा, थोड़ी देर इसके बीच में बैठ जाया करें, एक दो बार बना लें रोज। आप अपने घर के चारों ओर भी आभा मंडल बना दें, विनाश काल में बहुत काम आएगी ये बात, भटकती आत्माएं भी नहीं आएंगी, आपके घर की तरफ देखेंगी नहीं, प्रभा मंडल बनाया करें। और अपने चारों ओर भी सबको सिखा सकते हैं, मैं बहुत पावरफुल हूं, आत्मा को न भी माने कोई बात नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूं, बस शक्तियों की लाल किरणें ओरा बना रही हैं, आभा मंडल बना रही हैं। तो बहुत हल्के रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत पावरफुल होके रहेंगे। देखो मनुष्य की नेचर है, बहुतों की नेचर है, परिस्थिति जितनी बढ़े अपनी पावर को उतना ही बढ़ा लिया जाए, घबराहट नहीं, तो हमसे परिस्थितियां हार मानती जाएंगी, हम पावरफुल होते जाएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना बार बार, आपदाओं को अवसर में बदलो, ये बहुत अच्छी बात है उनकी, हम भी परिस्थितियों को पावर में बदलेंगे, परिस्थिति जितनी आए अपने को उतना ही अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। और दो ही संकल्प हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं, संकल्पों से ही हम पावरफुल बनते हैं। अगली बात बहुत जरूरी है, मोह ममत्व और आसक्तियों को मिटाते चलना। आसक्तियां मोह ममत्व केवल मनुष्यों का नहीं, पदार्थों का, धन का, ज्वेलरी का, सोने का, इन सब की भी के प्रति भी अनासक्त वृत्ति हो जाए, क्योंकि जो कुछ हमें मिलने जा रहा है वो इससे बहुत ज्यादा है, उसकी तो तुलना नहीं, गणना नहीं, उसकी वैल्यू नहीं आंकी जा सकती। जो कुछ हमें मिलने जा रहा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वर्ग क्या होगा इस समय जिस दुनिया में हम रहते हैं उतना ही जानते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं जानते। हमारी कल्पनाओं से भी परे अथाह धन संपदा है। बाबा साकार में थे कुछ समय पहले देह छोड़ने के, बाबा ने कहा तब मुंबई इतनी बड़ी नहीं थी, अब से शायद दसवां हिस्सा हो, तब बाबा ने कहा जितनी सारी मुंबई की संपदा है ना उतना तो तुम्हारे महल में एक हीरा लगा होगा। मैं भी सोचने लगा क्या क्या हीरे इतने महंगे होते हैं, तो मैंने देखा एक जगह इंदौर में मैं गया, इंदौर के आसपास था या कहाँ था, तो मुझे एक चीज दिखाने ले गए, एक बगीचा सा था, सुरक्षा काफी की हुई थी वहां, उसमें एक अच्छा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे को दो दो दीवारें थी, अच्छे लॉक लगे हुए थे और सामने एक मूर्ति थी इतनी बड़ी, सवा फुट होगी, ट्रांसपेरेंट, किसी कीमती चीज की। मुझे बताया इसकी कीमत इतनी है कि अगर इसे बेच दिया जाए तो भारत का सारा कर्ज उतर जाए। तो मैं सोचा ये इतनी कीमती चीजें हैं, देखने में बड़ी भव्य लगती थी, किसी बहुमूल्य धातु की थी वो। तो ऐसे ही जैसे वो मंदिर है साउथ में, केरल में है ना पद्मनाभम, कितनी धन संपदा है, सतयुग में कितनी होगी कल्पनातीत। इसलिए जो वर्तमान हमारे पास है, चित्त से सच्चे मन से कर दो बाबा ये तुम्हारा, तुमको अर्पित रहेगा वो आपके पास, अर्पित कर दो उसे, समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है, इसको सब लोग समझ भी नहीं सकते। समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। मैं अभी बाहर कहीं जाना नहीं हो रहा है, तो क्लासेस तो रोज होती हैं, दो या तीन ऑनलाइन, लेकिन मैं रात को कृष्णा वो आता है सीरियल वो देखता हूँ, मेरा कुछ लक्ष्य है उसे देखने का। कहानियां तो सब पता ही है हमें, सीरियल वाले थोड़ा चटपटा बनाते हैं, लेकिन कितनी सुंदर बातें वो भी करते हैं। तो सुदामा जा रहा है द्वारका और थक गया है, तो खंडर सा उसे दिखाई दिया मकान, वहां अपना बिस्तर लगा के सो गया है। लक्ष्मी पूछ रही है, रुक्मणी पूछ रही श्री कृष्ण से, ये तो रात को ऐसे ही सो गया खंडर में। तो उत्तर दिया, जो लोग मुझे सब कुछ अर्पित कर देते हैं वो चैन की नींद सोते हैं। मुझे डायलॉग बड़ा सुंदर लगा, सब कुछ तेरा, जीवन भी तेरा, मृत्यु जीवन हार जीत सब तुम्हारे हाथों में। ऐसे ही वो प्रहलाद का दिखाया, उसको मारने की कोशिश करता, पांच सात बार दिखाई उसको मार रहा है ना कश्यप, वो निश्चिंत है। फिर लक्ष्मी पूछ रही है कि ये मौत से डरता नहीं छोटा बच्चा, तो विष्णु जी उत्तर दे रहे हैं, इसको पता है जन्म और मौत वो मेरे हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, भले ही हमारे पास दूसरा ज्ञान है। पर देखो भक्ति में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसको है मृत्यु होगी तो कोई बचा नहीं सकता, नहीं होगी तो कोई मार ही नहीं सकता, ये चीज हमें बहुत काम आएंगी विनाश काल में। समर्पण भाव, इसलिए अनासक्त करते चले अपने को, अपने घर को देखें, परिवार को देखें, अपने जो धन संपदा आपके पास है उनको देखो और संकल्प करो ये सब अब छोड़ के हमें जाना है, और इससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलने वाली है। ये तो सब जानते हैं, एक चीज छोड़नी होती है और उससे हजार गुनी सुंदर चीज मिल रही हो तो ऐसे फेंक देते हैं उसे, ये बेकार हो गई ये तो। अथा सुखों के साधन सब कुछ होंगे, सबके घरों में पुष्पक विमान होंगे। घर ऐसे नहीं होंगे जैसे आज हैं, भाई 100 गज का फ्लोट मिल रहा है, 1000 गज का मिल रहा है, ले लो इतनी सी जगह है, ये भी बहुत महंगी है, वहां तो छोटे से छोटे देवता का घर भी 1 वर्ग किलोमीटर में तो होगा ही ना, छोटे से छोटे का 100 मीटर बाई 100 मीटर इतना तो होगा। और जो और अच्छे पुरुषार्थी हैं, क्योंकि दुनिया है ना, 9 लाख लोगों को आप दुनिया में फैलाओ, भारत का ही बहुत बड़ा हिस्सा तो देवताओं से घिरा हुआ होगा ना, बसे हुए होंगे देवता, वैसे थोड़ा ही दिल्ली जितने एरिया में बसे हुए होंगे, लंबा चौड़ा हिस्सा होगा, हिमालय के नीचे से छोड़कर महाराष्ट्र तक 1-2 जन्म के बाद जनसंख्या पहुंच जाएगी, तो बड़े बड़े स्थान होंगे। अथा धन संपदा, इसलिए अनासक्त वृत्ति, अपनी स्थिति को बहुत डिटैच, बहुत योग्युक्त संपन्न बनाते चलना है। अब मैं आपका ध्यान दूसरी चीजों पर दिलाता हूं, सेवाएं हमें बहुत करनी है, सेवा पुण्य है, इस पुण्य का बल हमें सुरक्षित करेगा विनाश काल में। पाप से तो पूरी तरह मुक्त हो जाना है, लेकिन पुण्यों का खाता भी बहुत बढ़ा देना है। पुण्य मनुष्य के रक्षक हैं, पाप उसे हर जगह डुबो देगा। सेवाएं बहुत होने जा रही हैं, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी। ये कोर्स आदि कराना ये सब पूरा हो रहा है, बस पूरा हो जाएगा। जिन्होंने सर्व खजाने जमा किए हुए होंगे, संसार की अथाह धन संपदा बाबा के पास आ जाएगी। बाबा ने बोली हुई ये बात, मैं तो 73 से सुना हुआ है, संसार की अथाह धन संपदा यज्ञ में आ जाएगी, लेकिन यज्ञ निवासियों को संपूर्ण त्याग और वैराग्य से रहना होगा, यानी उसमें लग जाएं। उसमें लग गए तो तपस्या, हमारा तेज, हमारा अलौकिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हमारे पास तो सबसे बड़ा खजाना ये अलौकिक खजाना है, इस खजाने की भेंट में स्थूल खजाने बहुत छोटी चीज हो जाएंगी। आप में से जो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हों, बहने बैठी हैं, मैं बाबा का एक महावाक्य आप सबको याद दिला देता हूं, जो आपको नहीं पता होगा। एक ही बार आया है मुरली में और मुझे वो महावाक्य विशेष प्रेरणाएं देता है तब से ही, और वो ये है, देखो सबके लिए तो बाबा कहते हैं कि घर चलना है, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, मैं आया ही इसलिए हूं, लेकिन कुछ महान आत्माओं के लिए उन्होंने कहा, जब तक तुमने ब्राह्मण पन के अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। राज है इसमें बहुत। देखो कुछ दादियां एडवांस पार्टी में चली गई हैं, वो भी घर नहीं जाएंगी जल्दी, सबको भेज कर जाएंगी, कुछ कार्य करने हैं इस धरा पर वो करके जाएंगी। राज्य स्थापित करना है, श्री कृष्ण का फादर भारत का अंतिम सम्राट होगा, आपको ये बात शायद ना पता हो। ये खेल पूरा हो जाएगा जो डेमोक्रेसी का चल रहा है, प्रजातंत्र, और एक व्यक्ति भारत का सम्राट बन जाएगा, वो अंतिम सम्राट होगा, वो होगा श्री कृष्ण का फादर, वो सतयुग की स्थूल रचना करा देगा बहुत जल्दी। उसके बैठते ही प्रकृति शांत हो जाएगी, उसके घर में श्री कृष्ण का जन्म होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मिट्टी के मकानों में नहीं हो सकता, ईंटों के महलों में नहीं, सोने के महलों में ही होगा। तो ये खेल अभी चलना है, एडवांस पार्टी की आत्माओं को ये काम करना है, और जो जीवित रहेंगी महान आत्माएं उन्हें क्या करना है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कोरोना से जिनकी भी मृत्यु हुई, आप सब दो बातें जानते हैं, उनको उनके प्रियजनों से मिलने नहीं दिया गया। अंत में क्या हाल होता है, जिनका उनसे बहुत प्यार हो, बाप मर रहा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनको वो देख नहीं पा रहा है, क्या होगी उसकी मनोस्थिति आखिरी, अति अति असंतुष्ट है, तृप्त। ये आत्माएं सब भटक रही हैं, उनके संस्कार भी नहीं हो रहे ठीक से, इतना डरा दिया था कोई आए नहीं, परिवार वाले ले नहीं डेड बॉडी को, तो ये सब भटक गए हैं। ये सब आत्माएं करोड़ों में हो जाएंगी, हो भी गई हैं, लेकिन ये अरबों में पहुंच जाएंगी। इन सब को मुक्ति देकर घर पहुंचा देना, ये बड़ा काम महान योगियों को करना होगा, वाइब्रेशंस देकर इन्हें मुक्त करना। एटम बम छूट गया एक बड़ा, कई करोड़ लोग मर गए, सब आत्माएं ऊपर स्पेस में भटक जाएंगी। सबको मुक्ति देकर घर भेजना, यहां संसार में दुखों की भरमार हो जाएगी, वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करना। मैं ये बड़े काम बता रहा हूं, मैं जानता हूं सबसे नहीं होंगे, पर कोई आप में से करना चाहे करे। मेडिकल साइंस पूरी तरह फेल हो जाएगी, कोई दवाई नहीं होगी डॉक्टरों के पास। पवित्र आत्माएं दृष्टि देकर दूसरों को निरोग करेंगी, ये बड़े काम महान योगियों को, श्रेष्ठ आत्माओं को करने होंगे। ये भी हमारी अचल अडोल स्थिति से जुड़ी हुई बात है। जब हम इन बड़े कार्यों में लग जाएंगे तो छोटी छोटी चीजें तो भूल ही जाएंगी। तो ये बड़े काम भी हमें करने हैं और अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। मैंने आपको संकल्प दिया 4 घंटे से ज्यादा योग, स्मृति स्वरूप स्थिति, उसमें स्वमान भी, उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास भी, और चलते फिरते जो भी सहज अभ्यास आप करें वो सब उसमें जुट जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें, शक्तियां नष्ट न होने दें, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ चिंतन में शक्तियां नष्ट होती हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, एक हमारी एक कॉन्फ्रेंस में ज्ञान सरोवर में एक नेत्रहीन व्यक्ति आया था, तो 3 साल पहले की बात होगी, मेरे पास ही बैठा था स्टेज पे। मैंने उससे बात की, आप कुछ काम भी करते हैं क्या, तो उसने क्या क्या बताया, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं कवि भी हूं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं। मैंने कहा फिर हिंदी पढ़ाते हो, हिंदी का तो लिटरेचर तो बहुत बड़ा है, आप कैसे पढ़ाते हो, मुझे सारा याद है, कविता लिखता हूं वो सब याद है, जो कवियों ने कविताएं लिखी हैं जो पढ़ाता हूं वो सब याद है मुझे। मैं सोचने लगा नेत्रों से मनुष्य की सबसे अधिक शक्तियां नष्ट होती हैं, नेत्र नहीं है तो सारी शक्तियां एकाग्र हैं, ब्रेन को ऐसा बना दिया है कि सब कुछ याद हो गया, और उससे भी ज्यादा शक्तियां नष्ट होती हैं मन के व्यर्थ संकल्पों से। इसलिए बहुत ध्यान देंगे, शक्तिशाली बनना है व्यर्थ, व्यर्थ का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, व्यर्थ भी सागर की तरह है, उससे बचना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पर कम रहना है, कन्याएं ध्यान दें, खतरनाक, डेंजरस, मौत के समान है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन। मेरे पास तो क्योंकि फोन कांटेक्ट होते हैं, 30 साल की एक कन्या, कहा मैं तो पागल हो गई हूँ भाई जी, क्या करूँ। मैंने कहा किसने कह दिया पागल हो गई हो? कहा मैं जानती हूँ मैं पागल हो गई हूँ। क्यों हो गई? बहुत मोबाइल पे रही हूँ मैं, मोबाइल फोन पे बहुत रही हूँ। मैंने कहा अब तो छोड़ दो। छोड़ती तो हूँ पर फिर पकड़ लेती हूँ। एक लड़का रात को दूर फोन रख के सोता है कि मैं नहीं देखूंगा 10 बजे के बाद। नींद खुलती है ऐसा वो व्यसन हो गया, फिर उठा के लाता है ताला खोल के अलमारी का, फिर देखना शुरू करता है। उसका भी हाल यही हो गया। एक के नहीं, हजारों हजारों की संख्या में युवक इसके कारण मानसिक पीड़ित हो रहे हैं। बचेंगे इन सबसे, गंदगी के सिवाय इनमें कुछ नहीं है। आपको पता हो हमारे यहाँ गूगल का, अमेरिका में है ना गूगल, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO आया था, वो ज्ञान में है अभी, सबसे टॉप ऑफिसर जो उसका है, उसने बताया, ज्ञान ले लिया था, 1 साल पहले आया था, कहा मेरे बच्चे 14-15 साल के हैं, हमने उनको अभी तक फोन नहीं लेके दिया है और उनको बता दिया है फोन नहीं लेना कभी भी, कहा इसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। कितनी झूठी इन्फॉर्मेशन है जो मनुष्य को, ब्रेन को भ्रमित करती है। तो सभी अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। लास्ट बात जो मेरी बहुत प्रिय बात है, जो संसार में कहीं लिखी नहीं गई है, मनोवैज्ञानिकों को भी उसका नहीं पता, ये हमने बाबा की मुरली से जानी है। बाबा ने मनोविज्ञान का जितना गहरा ज्ञान दिया है, सारे संसार के मनोवैज्ञानिकों को भी उतना ज्ञान नहीं है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वो पहले आत्मा से जाती है ब्रेन में, फिर पूरे शरीर में, फिर चारों ओर। बहुत सुंदर विषय है ये। एक एक संकल्प का इफेक्ट आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी पड़ता है, भविष्य पर भी पड़ता है। एक एक संकल्प दूर दूर तक इफेक्ट डाल रहा है। इसलिए सोच समझ कर सोचेंगे। हम भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, ध्यान से सोचेंगे और ये पक्का कर लें जो हम बार बार सोचेंगे उसका निर्माण हो जाएगा। इसलिए एक संकल्प जो मैंने बहुत सिखाया है और मेरे पास उसके बहुत अनुभव हैं, आप भी उसे एक संकल्प से अनंत अनुभव प्राप्त करें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे सवेरे और भी जोड़ दिया करें, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मेरे साथ स्वयं भगवान है। फिर सवेरे ये संकल्प कर दिया करें 5 बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। परिवार को भी सिखा दें और इस संकल्प का जादू देखना, ये बाबा से ही सीखा हमने। हमारा अपना कुछ नहीं है, सब प्रभु जी का माल है। बाबा ने कहा सदैव सोचो जो हो रहा वो भी अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, ये तो सुनाते रहे। एक बार एक चीज और जोड़ दी इसमें, तुम सदैव कहो सब कुछ अच्छा होगा, तो अगर बुरा होने वाला होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। तब से मैंने इस पे प्रयोग शुरू किए कि हमारे संकल्पों में इतनी ताकत है कि संकल्पों से हम बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं, भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, प्रकृति को ऑर्डर दे सकते हैं, तो अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अब शुरुआत हो गई है खुलने की। यज्ञ बंद हो गया था ना सब कुछ, आपका ही बड़ा ग्रुप आया, पिछला तो छोटा सा था, 15-20 लोग थे। बहुत अच्छा विजय बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यज्ञ में रहने वालों को तो अकेले रहने की आदत नहीं है ना, यहाँ तो रिमझिम में रहने की आदत पड़ी हुई थी। जब अकेले हो जाते हैं तो लोगों को, कईयों को तो काम ही नहीं रहता। चलो मुझे तो बहुत ज्यादा है काम, लेकिन बहुतों को तो काम ही नहीं रहता, तो बोर होते रहते हैं, कोरोना को कोसते रहते हैं ये कब जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, एक सुंदर शुरुआत हो गई, अब ये बढ़ती जाएगी। और अब तो खुल भी रहा है, डिस्टेंसिंग में तो बैठ ही सकते हैं, हमारे पास तो साधन ही बहुत हैं। तो बहुत अपने को पावरफुल बनाना, सेवाओं की तो सुनामी आ जाएगी 2-3 साल में ही, बहुत सेवाएं होंगी, हमें करना ही नहीं पड़ेगा। 2025 तक तो जय जयकार के दिन शुरू हो जाएंगे। ओम शांति। चलो अभी मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए अपने चार ओर आभा मंडल बनाना, और बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है सर्वशक्तिवान, इस अनुभव में बैठना है।